एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं।
जी,
उर्सुला हेगी का स्टोन्स फ्रॉम द रिवर, यानी नदी के पत्थर। ये किताब जर्मनी के इतिहास के एक बहुत ही उथल पुथल वाले दौर को आम लोगों की नजरों से देखती है।
बिल्कुल, और लेखिका उर्सुला हेगी वो खुद जर्मन अमेरिकी हैं, तो उनका वो अनुभव, वो पहचान की कश्मकश, वो उनके लेखन में साफ दिखती है।
हाँ, खासकर जब वो द्वितीय विश्व युद्ध की विरासत या मतलब अपनेपन की तलाश जैसे विषयों को उठाती हैं।
जी, ये कहानी हमें ले जाती है जर्मनी के एक काल्पनिक कस्बे बर्गडॉर्फ में। समय है लगभग 1915 से 1952 का,
यानी दो विश्व युद्धों के बीच का और उसके बाद का समय, और नाजी हुकूमत का दौर भी। कितना मुश्किल वक्त रहा होगा वो।
बहुत ज्यादा। तो आज हम इसी कहानी के रेशों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि मुख्य किरदार ट्रूडी मोंटैग का सफर कैसा रहा।
हाँ, और कहानी के अहम मोड़ क्या थे, कौन से विषय हैं जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बुगडॉर्फ की गलियों और उसकी कहानियों का ये सफर।
तो कहानी की धुरी है ट्रूडी मोंटैग। उसका जन्म ही कह सकते हैं एक चुनौती के साथ होता है। वो एक ज्वेर्ग है जिसे हम बौना कहते हैं,
और उस समय के समाज में तो ये उसे एकदम अलग थलग कर देता होगा।
बिल्कुल, उसे फौरन एक बाहरी का ठप्पा मिल जाता है। और फिर जब वो सिर्फ 4 साल की थी, उसे अपनी माँ गर्ट्रूड की लाश मिलती है। खुदकुशी कर ली थी उन्होंने।
ओह, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सदमा।
हाँ, और ये हादसा, ये उसकी पूरी जिंदगी, उसके नजरिए को एक तरह से गढ़ देता है।
जाहिर है, ऐसे में तो इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करता होगा। कोई सहारा था उसका?
सहारा थे उसके पिता लियो मोंटैग। वो कस्बे में एक पे लाइब्रेरी चलाते थे, मतलब किराए पर किताबें देने वाली दुकान।
अच्छा
लाइब्रेरी।
जी, लियो का स्वभाव बड़ा नर्म था, समझदार थे वो, और ट्रूडी से बहुत प्यार करते थे। उसे दुनिया की कड़वाहट से बचाना चाहते थे।
और वो लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं रही होगी फिर।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लाइब्रेरी धीरे धीरे बुर्गडॉर्फ के लोगों के लिए एक अड्डा बन गई। लोग किताबें लेने आते, गपशप करते, सलाह लेते, और कभी कभी तो अपने गहरे राज भी खोल देते थे।
तो ट्रूडी उसी माहौल में पली बड़ी, किताबों और लोगों के राजों के बीच, लेकिन फिर भी अकेली। ये कैसे असर डालता है उस पे?
यही कहानी का खास पहलू है। शुरू में वो अकेली थी, थोड़ी कह सकते हैं गुस्सैल भी थी। शायद अपने दर्द को छुपाने का तरीका था ये। लेकिन धीरे धीरे उसका वो अलग होना, उसका वो छोटा कद, वो उसकी एक अजीब सी ताकत बन जाता है।
ताकत कैसे?
क्योंकि लोग उसे ज्यादा नोटिस नहीं करते थे, उसे कम आंकते थे, और इसी वजह से वो उन बातों को, उन फुसफुसाहटों को सुन लेती थी जो दूसरों से छूट जाती। वो लोगों के चेहरों के पीछे छिपी कहानियां पढ़ने लगी।
अरे वाह, एक तरह से वो अनजाने में ही बुर्गडॉर्फ की अनऑफिशियल इतिहासकार बन गई।
कमाल है, मतलब जो चीज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझी जा सकती थी, वही उसकी एक खासियत, एक अनोखी नजर बन गई। लेकिन ये नजर उसे कहाँ ले जाती है, खासकर तब जब जर्मनी में हालात बदल रहे थे, नाजी दौर आ रहा था।
हाँ, और वो बदलाव बहुत तेजी से आता है। 1930 का दशक है, हिटलर सत्ता में आ रहा है, और नाजी विचारधारा वो जहर की तरह बुर्गडॉर्फ जैसे छोटे शांत कस्बे में भी फैलने लगता है।
कैसे, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखता है ये बदलाव?
धीरे धीरे, पहले लोग हाइल हिटलर कहना शुरू करते हैं, फिर यहूदी पड़ोसियों के बारे में कानाफूसी होती है, फिर खुलेआम नफरत। जो लोग सालों से साथ रह रहे थे, जैसे अब्रामोविच परिवार, वो अचानक दूसरे हो जाते हैं, खतरा बन जाते हैं।
और ट्रूडी ये सब देख रही है, सुन रही है अपनी लाइब्रेरी की खिड़की से। ये मिली भगत, ये खामोशी, उपन्यास इसके बारे में क्या कहता है? लोग क्यों चुप रह जाते हैं?
उपन्यास इसी दुखती रग पर उंगली रखता है। वो दिखाता है कि बुराई कोई बड़ा राक्षस बनकर नहीं आती, वो छोटे छोटे समझौतों से पनपती है।
छोटे समझौते जैसे?
जैसे डर के मारे चुप रह जाना, या थोड़े से फायदे के लिए आंखें मूंद लेना, या बस ये सोचना कि मुझ पर आंच नहीं आनी चाहिए। जॉर्ज व्हीलर का किरदार है, जो कभी ट्रूडी का दोस्त था, वो कैसे नाजी बन जाता है, ये इसी का उदाहरण है। उपन्यास में एक जगह आता है कि जब तक सैनिक आए, बुर्गडॉर्फ के लोग सालों से उनकी तैयारी कर रहे थे। वो तैयारी क्या थी? वो यही छोटे छोटे विश्वासघात, यही नैतिक कमजोरियां थी।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। कि बड़ी त्रासदी की नींव कितनी खामोशी से रखी जाती है।
अच्छा, ऐसे माहौल में ट्रूडी और उसके पिता लियो, वो क्या करते हैं? क्या वो भी इसी भाव में शामिल हो जाते हैं?
लियो मोंटा का किरदार वो बहुत अहम है। वो पढ़े लिखे हैं, शांत हैं। शुरू में वो भी शायद सोचते हैं कि ये सब गुजर जाएगा, तटस्थ रहो, बच के रहो।
मतलब सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। हाँ, जैसे उस वक्त का पढ़ा लिखा मध्य वर्ग अक्सर सोचता था। लेकिन जब जुल्म बढ़ता है, जब उनके अपने जानने वाले, उनके यहूदी दोस्त और ग्राहक निशाने पर आते हैं, तब वो सिर्फ देखते नहीं रह पाते,
तो वो बदलते हैं, एक्शन लेते हैं।
जी देर से ही सही, लेकिन लेते हैं। जब अब्रामोविच परिवार के बेटे माइकल की जान खतरे में पड़ती है, तो लियो और ट्रूडी उसे अपने घर में छिपाते हैं। ये बहुत बड़ा जोखिम था।
यकीनन।
और यहाँ से लियो सिर्फ दर्शक नहीं रहते, वो प्रतिरोध का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरे शरणार्थियों को भी भागने में मदद करते हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि मतलब नैतिक रूप से जागने में कभी देर नहीं होती।
और ट्रूडी, उसका क्या रोल रहता है इस प्रतिरोध में? वो तो पहले से ही राजदार थी।
ट्रूडी का सफर तो और भी गहरा है। वो सिर्फ राजदार नहीं रहती, वो सक्रिय हो जाती है। लोगों को छिपाना, खबरें पहुंचाना, और सबसे जरूरी काम याद रखना।
याद रखना।
हाँ, उसका छोटा कद जिसे नाजी हल्के में लेते थे, वो उसके लिए एक तरह का कवच बन जाता है। वो सब देखती और सुनती है जिसे लोग भुलाना चाहेंगे। वो शहर की जैसे अंतरात्मा बन जाती है, सच की पहरेदार।
उसकी माँ का जो रवैया था उसके प्रति, क्या उसका भी कोई असर था इस पे?
शायद गर्ट्रूड की वो भावनात्मक दूरी, वो अस्वीकार, उसने ट्रूडी को बहुत दर्द दिया, लेकिन शायद अनजाने में ही उसे बहुत मजबूत और आत्मनिर्भर भी बना दिया। वो किसी सहारे के बिना जीना सीख गई थी।
तो ये दो यात्राएं, लियो के देर से जागी हुई चेतना और ट्रूडी का लगातार नैतिक संघर्ष, ये उपन्यास के केंद्र में हैं। अच्छा, अब जरा उपन्यास के मुख्य विषयों पर आते हैं। अन्यथा या अदरनेस का मुद्दा तो बहुत साफ है।
बिल्कुल, ट्रूडी का बौनापन सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो हर उस इंसान का प्रतीक है जिसे समाज अलग मानकर किनारे कर देता है।
चाहे वो शारीरिक रूप से अलग हो या धर्म या किसी और वजह से।
जी, उपन्यास दिखाता है कि समाज कैसे ये अलग की श्रेणियां बनाता है और फिर उन्हें निशाना बनाता है, चाहे वो ट्रूडी हो या शहर के यहूदी लोग। लेकिन खास बात यह है कि यही अलग होना ट्रूडी को एक खास नजर देता है।
हाँ, वो दूसरों के दर्द को शायद ज्यादा महसूस कर पाती है।
सही कहा, और शायद इसीलिए उसमें विरोध करने की हिम्मत भी आती है।
और इसी से जुड़ा है वो विषय, याद रखना बनाम भूल जाना, स्मृति और विस्मृति। युद्ध के बाद क्या होता है बुर्गडोर्फ में?
युद्ध खत्म होता है, अमेरिकी सेना आती है, और अचानक सब बदल जाता है। लोग ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
मतलब सामूहिक विस्मृति, सब भूल जाना चाहते हैं।
हाँ बिल्कुल, एक अजीब सी खामोशी, एक सामूहिक इनकार। लेकिन ट्रूडी, वो अब लाइब्रेरियन बन चुकी है, वो नहीं भूलती, वो उन सारे राजों, सारे सच की गवाह है।
जैसा उपन्यास में कहा है, वो रहस्यों की रखवाली होगी, वो याद रखने वाली होगी।
जी, वो शहर के इस दोहरेपन का सामना करती है, चिल्लाकर नहीं, बहस करके नहीं, बल्कि अपनी खामोश याददाश्त की ताकत से।
ये बहुत बहुत गहरा विचार है कि याद रखना भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। उपन्यास में एक और पंक्ति है, अंत में हम सब उन कहानियों के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें हम बताना चुनते हैं और जिन्हें हम भूलना चुनते हैं।
बिल्कुल, और यही कहानी कहने की ताकत का सवाल उठता है। ट्रूडी का कहानियां और राज जमा करना, वो सिर्फ आदत नहीं है,
वो एक तरह का प्रतिरोध है।
हाँ, सच को जिंदा रखने का तरीका, झूठ के खिलाफ इंसानी रिश्तों को बचाने का तरीका। ये कहानियां उसे ताकत देती हैं, उसे लोगों से जोड़ती हैं। वो जानती है कि लोगों की एक बाहरी जिंदगी होती है और एक अंदरूनी, वो दोनों की गवाह है।
हैगी की लिखने की शैली की भी बात करनी चाहिए, बहुत गीतात्मक, काव्यात्मक भाषा है।
जी बिल्कुल, और वो किरदारों के मन में बहुत गहरे उतरती हैं। कहानी ज्यादातर तीसरे पुरुष में है, लेकिन हम दुनिया को ट्रूडी की नजरों से देखते हैं।
हाँ, वो जमीन के नजदीक का नजरिया, लेकिन समझ बहुत गहरी। भाषा में एक ठहराव भी महसूस होता है।
शायद वो उस दौर के बदलावों की धीमी रफ्तार को दिखाता है।
और प्रतीक उपन्यास में बहुत सारे सिंबल हैं, नदी है, पत्थर हैं, लाइब्रेरी।
हाँ, नदी तो जैसे समय का बहाव है, इतिहास है, वो चीजों को बहा ले जाती है, लेकिन कभी कभी सच को ऊपर भी ले आती है।
और पत्थर?
पत्थर वो कहानियां हैं, वो राज, वो बोझ जिन्हें ट्रूडी उठाती है, सच के ठोस भारी टुकड़े। एक जगह जिक्र है कि कुछ पत्थर फेंकने के लिए होते हैं और कुछ समय के साथ घिसकर चिकने हो जाते हैं।
शायद अन्याय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं, प्रतिरोध या फिर वक्त के साथ समझ और उपचार।
और लाइब्रेरी?
लाइब्रेरी तो जैसे सच का एक नखलिस्तान है, झूठ और नफरत के माहौल में ज्ञान और स्मृति की जगह।
और ट्रूडी का कद खुद एक प्रतीक है अलग होने का, पूर्वाग्रह का, लेकिन साथ ही छिपी हुई ताकत का भी।
ये सब मिलकर कहानी को मतलब कई आयाम देते हैं।
बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं रहती, ये इंसान के मन, उसके डर, उसके साहस, उसकी जिम्मेदारियों की कहानी बन जाती है। और ये हमें थोड़ा असहज भी करती है।
हाँ, क्योंकि ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम उस जगह होते तो क्या करते? क्या हम चुप रहते? क्या हम लियो की तरह देर से जागते या ट्रूडी की तरह हिम्मत दिखाते?
सही कहा, ये उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता, नहीं किसी को हीरो या विलेन बनाता है, ये बस आईना दिखाता है।
और ट्रूडी का किरदार वो हमेशा याद रह जाता है। वो हमें सिखाती है कि जिन्हें समाज कमजोर समझता है, उनमें असाधारण समझ और ताकत हो सकती है।
ये हमें याद दिलाता है कि सभ्यता, इंसानियत, ये सब कितने नाजुक धागों से बंधे हैं, और इन्हें बचाए रखने के लिए हर एक इंसान का नैतिक साहस कितना जरूरी है।
खासकर आज के समय में, जब हम फिर से वैसी ही नफरत और बंटवारे की बातें सुनते हैं, ये उपन्यास और भी जरूरी लगता है।
ये हमें सवाल करने को कहता है, हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं, हम कौन सी कहानियां कह रहे हैं, कौन सी भुला रहे हैं, क्या हम में अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस है।
आखिर में ये उपन्यास मानवीय स्वभाव, नैतिक साहस और करुणा और उदासीनता के बीच जो एक शाश्वत संघर्ष चलता रहता है, उस पर एक गहरी नजर डालता है।
जूडी मॉन्टेक की यात्रा हमें प्रेरणा भी देती है और चुनौती भी, हमें अन्याय के सामने साहस और करुणा की अपनी क्षमता को समझने के लिए प्रेरित करती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।